गीता है सर्वशास्त्र में शिरोमणि, सबसे उत्तम से उत्तम गीता कोई माई बाप कहा जाता है, और जो भी शास्त्र है उनको माँ के पिता नहीं कहेंगे। श्रीमद् भगवत गीता माता गाई जाती है, भगवान के मुख कमल से निकली हुई गीता का ज्ञान है, माता क्यों गाई जाती है? क्योंकि भगवान ने जिसको मुख कमल से उत्पन्न किया, पैदा किया, वो उसकी बच्ची माता हो गई। तो बच्ची हुई या पहली रचना हुई? पहली रचना हुई। पहली रचना कौन होती है? बच्ची होती है या स्त्री होती है? पहली रचना होती है स्त्री, फिर बच्चे पैदा होते हैं। तो श्रीमद् भगवत गीता माता गाई जाती है, तो जरूर वो कौन हुआ? भगवान। गीता पति भगवान हुआ, भगवान के मुख कमल से निकली हुई गीता, ऊंचे ऊंचे बाप तो जरूर ऊंचे ऊंचे गाई हुई गीता हो गई। बाप जब ऊंचे ऊंचे है तो उसके साथ ऊंच कौन हुआ? माता हुई। तो गीता माता और पिता, गीता माता हो गई ऊंची ऊंची, कैसे ऊंची? सर्व शास्त्रों से ऊंचे, सर्व शास्त्र में शिरोमणि, क्रिएटर, किसकी क्रिएटर? सब शास्त्रों की, जितने भी शास्त्र हैं, वेद हैं, उन सब की क्रिएटर हो गई। बाकी सब शास्त्र हैं उनके भक्ति क्रिएशन, क्योंकि गीता में
वहाँ की जाए तो बहुत फर्क महसूस हूँ। तो कौन सी जाए की तुम से पकड़ कर देवता स्वर्ग में चढ़ो? जरूर स्वर्ण मिट्टी जाए होगी जिसकी तुम से पकड़ कर देवता स्वर्ग में चढ़ गए। दिखा तो दिन कैसे करो देवता है गाय के शरीर में निवास करते हो? शरीर मानो गाय में निवास करते हो शरीर में? अरे बच्चे कहाँ से पैदा होते हैं? माँ तो पेट से पैदा होते हैं ना। तो जितनी भी देव आत्माएं हैं उनका जन्म कहाँ से होता है? माँ के पेट से होता है ना। तो ब्राह्मणों का जन्म भी कहाँ से हुआ? ब्रह्मा से हुआ। ब्रह्मा का हो या ब्रह्म का हो, वैसे ब्रह्म लोग कोई आत्माएं आती है, वैसे ब्रह्मा के मन बुद्धि रूपी संकल्प क्षेत्र से, मन बुद्धि रूपी पेट से आत्माएं आती है। तो ब्रह्मा का हो, बड़ी माँ का हो या जगदम्बा का हो, तो उस ब्रह्मा ने तो शरीर छोड़ दिया, लेकिन वही ब्रह्मा की आत्मा प्रवेश किसमें करती है? जगदम्बा में प्रवेश करती है।
मान सरोवर तालाब है, ज्ञान मान सरोवर बाबा ने मुरली में बोला हुआ है, हम तो वहाँ निवास होता है। मान सरोवर जैसी झील स्वच्छ पानी की और कोई नहीं गई हुई, उसमें से कौन सी नदी निकलती है? ब्रह्मपुत्र नदी। और भी ब्रह्मपुत्र नदी नीचे नीचे तेज नहीं बहती रहती, गंगा की तरह नीचे गिरकर मैदान में नहीं आती, ऊंची स्टेज में बहते बहते अंत में जाकर के देवी गंगा में मिल जाती। फिर ब्रह्मपुत्र अवतागर का मेला होता है। तो ब्रह्मपुत्र नदी किसको बताया बाबा ने? ब्रह्मा। और ब्रह्मा कौन? ब्रह्म माने बड़ी, माँ माने माँ, बड़ी माँ। वो कौन? दादा लिख रहे। अगर दादा लिख रहा है तो हम ब्रह्मा कहें तो मुरली में तो आया है तो ऐसी ऐसी बच्चियां थी जो मम्मा बाबा को भी डायरेक्शन देती थी। ब्रह्म
पर आती थी, टीचर बन करके बैठती थी, हम उनके डायरेक्शन पर चलते थे, सुनिए से वाला प्रवेश करते थे, ऐसे ऐसी महाभारती भी है मधुबन के कटे हुए माता जी की, तो ब्रह्मा माता हुई या उसकी भी कोई माता हुई। किंतु साधक होता है कि ये जी ने आज ने उस माता की भी कोई माता थी, वो सारी जगत की माता हो रही है जिसकी कोई माता नहीं है, जगत अम्बा जिसकी रही है। तो वास्तव में ब्रह्मा का अर्थ हुआ जगत अम्बा, जो आज में बच्चे थे वो अंत में भी कर सकते थे, आज वाली वही आत्मा है फिर अंत में कर सकती थी, रुद्रमाला और विजयमाला की हेड बनती है, तो जरूर उनमें से ही अम्बा के रूप में कर सकती थी। अब उसको जगत की अम्मा कहो या ब्रह्मा कहो, मनी बड़ी अम्मा सबकी माँ, असुरों की भी माँ तो देवताओं की भी माँ, क्योंकि दोनों को ठिकाने लगाना मुक्त जीवन मुक्ति तो सबको चाहिए, इसलिए उसने बोला हुआ है कि परम पिता परमात्मा से ऋषि की बात कहीं मिलती है जगदम्बा को और जगदम्बा से मिलती है बच्चों को। तो उस ब्रह्मा ने कुछ नहीं छोड़ दिया जो साइकिलधारी ब्रह्मा हुआ, वास्तव में अब शरीर की स्थापना की बात है, ब्रह्मा ने भले शरीर छोड़ दिया लेकिन वो ब्रह्मा की सोल ऐसे नहीं है कि वो कार्य नहीं कर रही, वो दो रूपों में अभी भी कार्य कर रही है, एक शरीर से प्रवेश करने से मन और दूसरा
आत्मा। ये है बड़ी नदी ब्रह्मपुत्र, मेला भी सागर और ब्रह्मपुत्र नदी पर लगता है, कहाँ लगता है मेला माना मिलन मेला, वो तो फूल मेले मनाते रहते हैं भक्ति मार्ग में। वास्तव में बात यहाँ की है परमात्मा बाप आकर के आत्माओं से मिलन मेला प्रैक्टिकल के साकार में मनाते हैं, तो उसका गायन है। ये मेला ब्रह्मपुत्र नदी पर लगता है और बड़ा मेला लगता है, इससे बड़ा मेला और कोई होता नहीं है। ब्रह्मपुत्र का ही नाम क्यों लिया, वास्तव में तो भक्ति मार्ग में गंगा सागर का मेला कहा जाता है। ब्रह्मपुत्र सागर का तो मेला नहीं गायन है, ये तो बाबा ने बताया हमको असलियत, लेकिन ब्रह्मा भी सबसे बड़ी नदी है गंगा नदी, ज्ञान की गंगा। क्यों? क्योंकि वो गंगा तो मैदान में आकर कचड़े में जाती है और ब्रह्मपुत्र नदी वो तो पहाड़ों पर ऊंची ऊंची स्टेज में ही बहती बहती और डायरेक्ट सागर में आकर मिल जाती है। तो उस ऊंची स्टेज में बहने वाली नदी का गायन बाबा ने बताया, वो हुई जगदम्बा, सारे जगत की अम्बा ब्रह्मपुत्र, जहां सागर और नदी का संगम होता है मैं इसमें प्रवेश करता हूँ।
ब्रह्म मान बड़ी, माँ मान माँ बड़ी माँ, और जगदम्बा मान सारे जगत की माँ, तो बात एक ही हुई या दो बातें हुई? एक ही बात हुई, तो जरूर एक ही सोल की बात है जो प्रवेश करके बच्चों में कार्य करती है। तो माता पिता कैसे बनते हैं ये जानते नहीं। अब तुम बच्चों को कहा जाता है ले लो दुआएं माँ बाप की, ये दुआएं लेने की बात कब की है? जरूर है संगम युग में जब संपन्न स्टेज में बच्चे पार्ट बजाते हैं तो उनमें वो मम्मा और बाबा ब्रह्मा और सरस्वती की सोल प्रवेश करके पार्ट बजाती है, और उस समय का ये गायन है कि ले लो दुआएं माँ बाप की, अर्थात श्रीमत पर चलो। ये माता पिता ही सारे जगत में सबसे श्रेष्ठ माता पिता हैं, और धर्म पिताएं भी होते हैं। इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट भी क्या हैं? बड़े नामी ग्रामी धर्म पिताएं। लेकिन वो तो सिर्फ धर्म पिताएं हैं, लेकिन यहाँ तो बापों का भी बाप आया हुआ है, जिसका कोई बाप नहीं, जिसको साकार में कोई वर्षा देने वाली अथॉरिटी कोई नहीं हो सकता, और वो माताओं की भी माता है जिसकी कोई माता हो नहीं सकती। उस माता की कौन पालना करेगा? जैसे बाबा कहते हैं कन्याओं की संभाल के लिए कौन होनी चाहिए? है? माता होनी चाहिए। जहां जहां भी कन्याएं जाएं सर्विस करने के लिए, तो कन्याएं हैं तलवार और माताएं हैं ढाल। लेकिन जो जगदम्बा का पार्ट बजाने वाली होगी, उसके लिए कौन माता बनेगी? कोई बन सकती है क्या? ड्रामा प्लान अनुसार उसका पार्ट ही ऐसा है कि उसकी कोई सुरक्षा करने वाली नहीं हो सकती, क्योंकि वो तो जगत माता है।
तो बाप का डायरेक्शन कुछ और है और माँ का डायरेक्शन कुछ और है, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। बाप ने तो जब माता के ऊपर छोड़ दिया, तो माता का जो भी डायरेक्शन मिले तुम उसे फॉलो करो। अगर कुछ उल्टा सीधा होगा तो जिम्मेदारी किसकी? सुबादा की, बाप की जिम्मेदारी। तुम क्यों चिंता करते हो? तो बताओ,
तो रचयिता की मालिक, और उस रचयिता के द्वारा जो कष्ट रचना रचना उसकी मालिक। ये दो बातें जानना और पूरी पूरी जानना, तो जो पूरा पूरा जान जाता है वो विश्व का मालिक हो चुकी हो जाता है। तो ज्ञान के आधार पर ही सब बन जाते हैं। रचयिता और रचना की नॉलेज के आधार पर ही सदों का कितने रेशन होता है। माला में कौन सी आत्मा का क्या पद बनने वाला है,
किस नंबर में कौन सा माता आने वाला है,
ये भी निश्चित किस आधार पर होगा? रचयिता और रचना की नॉलेज के आधार।
आदि ब्रह्मा कौन, मध्य ब्रह्मा कौन और अंत ब्रह्मा कौन? जो आदि सो अंत ब्रह्मा, बीच में जो हुआ वो तो टाइटलधारी हो गया। तो आदि ब्रह्मा कौन, जगदम्बा?
भगवान वाच, या ऐसे भी कह सकते हैं गीता के भगवान शिव भगवान वाच। गीता का नाम लिया जाता है क्योंकि गीता को ही खंडन किया है। क्या? गीता माता है और माता जब खंडित की गई तो जरूर खंडित करने वाले ने माता के राज्य को स्वीकार नहीं किया। तो विदेशों में गॉड मदर को मानते हैं या गॉड फादर को मानते हैं? फिर गॉड गॉड फादर को मानते हैं, कहते हैं, लेकिन गॉड के रूप में उसको मान्यता नहीं देते। गॉड मदर मेरी कहते हैं कि क्राइस्ट माता तो मानते हैं, लेकिन गॉड के रूप में गॉड के साथ उसको मान्यता नहीं दी। गीता का नाम लिया जाता है, सारा मदार इस पर है कि गीता श्री कृष्ण साकार देवता ने नहीं गाई है। क्या शूटिंग पीरियड में कौन है कृष्ण की सोल है? कृष्ण की सोल कौन? बच्चा तो है,
ब्रह्मा बाबा शिव बाबा का तो बच्चा है, लेकिन है तो कृष्ण की सोल ना। तो शूटिंग पीरियड में गीता माता का भगवान कौन, गीता माता कौन और गीता पति भगवान कौन, साकार स्टेज में रहने वाला या निराकार स्टेज में रहने वाला, साकार स्टेज में रहने वाला गीता का भगवान है, साकार स्टेज में रहने वाला गीता का भगवान कैसे होगा? अगर साकार स्टेज में रहने वाला गीता का भगवान छोड़ विदेह आकाश सिंहासन ऊपर से छोड़ के नीचे आएगा तो हमको क्या करेगा, हमको भी साकार बनाएगा, देहाभिमानी बनाएगा कि आत्माभिमानी बनाएगा, क्या बनाएगा? आत्माभिमानी बनाएगा, साकार भगवान। साकारी स्टेज में जो खुद होगा देहाभिमानी की स्टेज में, वो हमको भी साकारी बना देगा। तो वास्तव में गीता का भगवान, गीता पति भगवान वो तो नष्टो मोहा स्मृति लब्धा बनाने के लिए आता कि तुम आत्मा हो, तुम देह नहीं हो। ये स्मृति पक्की होने से क्या होगा कि मैं आत्मा और मेरा बाप परमात्मा, आत्मिक स्टेज हो गई। तो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार सब सब खलास हो जाते। तो कोई साकार स्टेज में रहने वाला गीता का भगवान नहीं हो सकता, और वो गीता सुनाए करके गति सदगति नहीं कर सकता।
हम तो भारतवासी बच्चे हैं ना, हम कोई विदेशवासी बच्चे थोड़े ही हैं। तो भारतवासियों का ये विशेष फर्ज हो जाता है कि वो मातेले बनकर गिरे, माता की गोद का प्यार ले, माता की बुद्धि में ये सिक्का बैठ जाना चाहिए कि ये मेरे असली बच्चे, ये मेरे अंत तक साथ निभाने वाले हैं, कभी भी धोखा देने वाले नहीं है। क्यों? क्योंकि बाप माताओं के द्वारा स्वर्ग का उद्घाटन कराने आए।
तो जैसा गायन है, दिल्ली है बाप दादा का दिल, दिल्ली को सब फॉलो करेंगे, दिल्ली के सामने सबको माथा झुकाना है। इतना प्रभाव दिल्ली का क्यों बढ़ा दिया? क्या मिट्टी पत्थर के सामने माथा झुकाना है क्या है? चैतन्य के सामने माथा झुकाने की बात है। माथा माथा माना मन बुद्धि आत्मा, ये झुकनी चाहिए। क्यों झुकनी चाहिए? जरूर दिल्ली ने जितना अपने को स्वाहा किया है प्रैक्टिकल स्टेज में, इतना किसी ने स्वाहा किया नहीं है। एक होती है सेवा निस्वार्थ, और एक सेवा होती है स्वार्थ पूर्वक। मान मिल जाए, मर्तबा मिल जाए, हमारी बात मानी जाए, ढेर सारी बात। निस्वार्थ जो सेवा है वही ईश्वरीय सेवा सच्ची कही जाती है, उसका रिजल्ट निकलता है जल्दी। और स्वार्थ युक्त जो ईश्वरीय सेवा होती है उसमें कभी भी रिजल्ट जल्दी नहीं निकलता, चाहे कितनी भी एड़ी चोटी की पावर लगा के की जाए। तो दिल्ली बाप दादा का दिल क्यों बनी? जरूरत सबसे आगे और सबसे पहला और सबसे जाती कदम उठाया होगा, और तो बाद में निकले, लेकिन दिल्ली आगे कदम बढ़ाती। जब बाप की प्रत्यक्षता विदेशियों के द्वारा होती है तो रिसीव कौन करता है? कोई और शहर रिसीव नहीं करता। रिसीव करना माना प्रैक्टिकल में आना। दिल्ली ही पहले प्रैक्टिकल कदम बढ़ाती है। तो दिल्ली को माथा तो झुकाना ही पड़ेगा। बाबा के जो भी बातें हैं वो पत्थर की लकीर हैं, उनका विरोध कोई नहीं कर सकता।
और जब दिल्ली को माथा झुकाना पड़ेगा तो देह अहंकार उसके सामने चल नहीं सकता। बाप भी उस चंद्रमा को सर माथे पर रखे हुए है, किसको? उस ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा को। कौन है ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा? दो ही माता। वो तो टाइटल मिला हुआ था दादा लेखराज ब्रह्मा को, असली चंद्रमा नहीं है वो। असली चंद्रमा तो वास्तव में वही बड़ी माता है जिसका सारा कार्य बच्चे ने किया था माता के रूप में, लेकिन थोड़ी त्रुटि रह गई। अब वो त्रुटि भरपाई होनी। माता जब उसके ऊपर से बाप का साया हट जाता है तो बच्चों के कंट्रोल में आ जाती है। बच्चे अगर आंसुरी है तो माता का हार्ट फेल हो जाता हुआ, लेकिन अगर माता को अपना खोया हुआ पति मिल जाए और माता अपने शक्ति स्वरूप में आ जाए तो क्या बच्चों से डर के रहेगी, घबराएगी क्या? नहीं, वो ही माताएं शक्ति स्वरूप ही बन जाती। फिर क्या होता है? जिन असुरों ने ब्रह्मा का गला घोट दिया, क्या किया? गला घोट दिया, हार्ट फेल कर दिया। वो ही असुर उस महाकाली के दबोच में आ जाते। क्यों? क्योंकि परमात्मा बाप आकर के शक्तियों को पहली बादशाही देता है। शक्तियां ही आज से लेकर के अंत तक परमात्मा बाप की सहयोगी बनती आई है।
शिव बाबा बच्चों को बैठ समझाते हैं ब्रह्मा मुख से, ये है गौ मुख, बैल मुख नंदीगढ़ है ना, ये कौन सा मुख है? गौ मुख। और नंदीगढ़ किसे कहते हैं? गौ मुख तो फीमेल हो गया और नंदीगण तो मेल को कहा जाता है, और गण माना समूह, एक बैल की तो बात नहीं, कम से कम दो तो होने चाहिए। कांग्रेस गवर्नमेंट में भी पहले दो बैलों की जोड़ी होती थी। गौमुख कौन है और नंदीगण कौन है? गीत भी सुना, साजन कहते हैं सजनियों को, अब सजनिया सिर्फ फीमेल तो नहीं है, ये मेल्स भी सजनिया है ना? कौन से मेल्स? राम और कृष्ण की सोल, जो पुरुष रूप धारण करके संगम युग में पार्ट बजाती है वो हुए नंदीगढ़, और जगदम्बा की सोल जो ब्रह्मपुत्रा नदी हुई उसे ब्रह्मपुत्रा कहो या गौमुख कहो, वो हुई फीमेल।
सरोवर से कौन सी नदी निकलती है पता है? ब्रह्मपुत्रा नदी। जो ज्ञानमान सरोवर है उसको ज्ञान सागर नहीं कहा, वास्तव में ज्ञान सागर कौन हुआ? सुप्रीम सोल शिव। और ज्ञानमान सरोवर कौन हुआ? जिसमें शुद्ध जल भरा रहता है, जिसके किनारे हंस निवास करते हैं। क्या? हाँ, हंस और परम हंसों का निवास कहाँ होता है? मानसरोवर झील के किनारे। तो उससे निकलती है कौन सी नदी? ब्रह्मपुत्रा नदी। ब्रह्मपुत्रा क्यों कहते हैं बाबा? उसका नाम क्या है? दुनिया वाले उसका नाम क्या देते हैं? ब्रह्मपुत्र के ब्रह्मपुत्री नक्शे में नाम क्या है देखना। तो बाबा कहते हैं ब्रह्मपुत्रा नदी। पुत्रा क्यों कहा? नहीं, त्रा की बात नहीं। तो ब्रह्मपुत्रा नदी वो हो गई रचना ज्ञान मानसरोवर की। ज्ञान मानसरोवर से क्या निकलती है? ब्रह्मपुत्रा नदी। जो परम ब्रह्म है उसकी पुत्रा। पुत्रा नाम क्यों दिया? विजय माला का मणका है या रुद्रमाला का मणका है? रुद्रमाला का मणका है तो ब्रह्मपुत्रा है। विजय माला के मणके होंगे तो ब्रह्मपुत्री होगी। लेकिन दुनिया ने उसका नाम ब्रह्मपुत्र नदी रखा है। लेकिन बाबा उसको क्या कहते हैं? ब्रह्मपुत्रा नदी। ये हैं ज्ञान नदियां और तुम हो सरोवर। तुम क्या हो? तुम हो सरोवर। किसने कहा? ब्रह्मा बाबा कहने वाले हैं मुरलियों। गीता का भगवान कृष्ण बनाई दिया तो आज किसने कहा? देव बाप ने कहा है? हाँ, राम वाली आत्मा को कहा तुम हो ज्ञानमान सरोवर और ये है ब्रह्मपुत्रा। ये है रचना और तुम हो रचयिता। रचयिता साकार में होता है या निराकार? रचयिता भी साकार में होगा तो रचना भी साकार में होगी।
जगदम्बा की भी क्या कहते हैं? सर्व की मनोकामना पूर्ण करने वाली, सिर्फ मनोकामना पूर्ण करती है। लक्ष्मी से मांगते हैं सिर्फ धन और जगदम्बा से सब मनोकामनाएं पूरी करने जाती हैं। तो जगदम्बा सरस्वती भी कामधेनु है। दो नामों की इकट्ठा क्यों कर दी है? जगत की अम्बा है या सरस्वती है? सरस्वती नदी आदि से निकली हुई है, अंत तक जाती है या मध्य में निकलती है, मध्य में ही लोप हो जाती है? सरस्वती नदी तो मध्य में आती है, मध्य में ही लोप हो जाती है, ऐसे दिखाते हैं। जगदम्बा आदि में होगी या मध्य में आएगी? जगत की अम्बा है तो जरूर आदि में होनी चाहिए। आदि में तो अंत में भी होगी। आदि से लेकर के अंत तक उसका पार्ट होना चाहिए, ऑलराउंड पार्ट धारी। तो जगदम्बा और सरस्वती दोनों को मिला क्यों दिया है? या तो जगदम्बा कहते या सरस्वती कहते, दोनों को मिला के एक क्यों कह दिया कि दोनों मिलकर के कामधेनु बनती है? क्योंकि सरस्वती नदी जो बीच में निकलती है, बीच में ही लोप हो जाती है, वही नदी एक है देवी के रूप में जो नौ कन्याओं में प्रवेश करती है। जैसे जैसे आधार में प्रवेश करती है वैसा वैसा देवी का उसका नाम काम के आधार पर दिया जाता है। तो सरस्वती नदी वो तो मध्य में आती है, मध्य में लोप होती है। लोप किस लिए होती है? क्योंकि सूक्ष्म शरीर धारण कर लेती है। सूक्ष्म शरीर से धारण करके फिर बीज रूप स्टेज में प्रवेश करती है। किसमें प्रवेश करती है? जगदम्बा जो यज्ञ के आदि में भी थी।
सारे जगत की अम्बा जरूर यज्ञ के आदि में जगत पिता के साथ ही, तो वही जगदम्बा जो आदि में थी जिसके लिए मुरली में बोला हुआ है। ऐसी ऐसी बच्चियां थी जो मम्मा वाला को ड्रिल सिखाती थी, टीचर बनकर के बैठती थी। दूसरी मुरली बोला 10 वर्ष से रहने वाला ध्यान में जाती थी, मम्मा बाबा को ड्रिल कराती थी, उनमें बाबा प्रवेश करती थी। इससे साबित हुआ कि 10 साल से बाबा के साथ रहने वाला कोई व्यक्ति था जो मम्मा बाबा को भी यज्ञ के आदि में कंट्रोल करता था, वो जगत पिता था और उसके साथ रहने वाली शक्ति जगत अम्बा थी, जगत माता थी, प्रजा माता, वो आज में ही चले गए, लोप हो गए। लेकिन ब्राह्मण जन्म जो एक बार ले लेते हैं और शरीर छोड़ देते हैं, वो दोबारा यज्ञ में जरूर उनको आना है। अपने पूर्व जन्म की प्रारब्ध लेकर के दोबारा जन्म लेकर के यज्ञ में आते हैं तो तीव्र गति धारण करते हैं, तीव्र पुरुषार्थ करते हैं, बाप की उनको मदद मिलती है। तो सरस्वती की आत्मा उनमें प्रवेश करती है, किसमें? जगदम्बा। इसलिए बताया जगदम्बा सरस्वती भी कामधेनु है, माना जगदम्बा में सरस्वती की सोल प्रवेश करती है, दोनों का कॉम्बिनेशन होता है तो उसे कामधेनु कहा जाता है। 21 दिन के लिए सभी की मनोकामनाएं पूरी करती है। 21 जन्म में मनोकामनाएं कैसी होंगी? श्रेष्ठ मनोकामनाएं होंगी या भ्रष्ट मनोकामनाएं होंगी? श्रेष्ठ मनोकामनाएं। तो जो भी श्रेष्ठ मनोकामनाएं हैं वो 21 जन्म के लिए जगदम्बा पूरी करती है। तुम भी काम जैन हो, वही नाम फिर गऊ पर रख दिया है क्या? बस जब तुम सर्व की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली हो तो ये जानवर का नाम क्यों रख दिया है? गऊ के लिए दिखाते हैं कि सब देवताओं का उसमें वास है, गऊ का चित्र बनाते हैं और उसमें सब देवताएं दिखाते हैं, मस्तक से लेकर के पूंछ तक। ऐसा क्यों दिखाते हैं? क्योंकि जो भी देवी देवता बनने वाली आत्माएं हैं वो सारे विश्व की आधार हैं, सारे विश्व की बीज हैं, वो सब आत्माएं उस ब्रह्मा से ही अपने स्वरूप को प्राप्त करती हैं, उस जगदम्बा से ही सबको नंबरवार को सात संसार विश्व की बात कही चलती है, अपने स्वरूप को जानने की बात। तो नाम गौ के ऊपर रख दिया है जगदम्बा, वास्तव में गौ की बात नहीं है, ये गौ के सीधे साधे स्वभाव संस्कार की बात है। जो बहुत दूध देती है उसका नाम कामधेनु रखा है।
उनका चला है माता, वो माता की है देवी की भाग्य विधाता। नीचे नीचे रूहानी बच्चों ने गीत की लाइन सुनी, किसकी महिमा सुनी? जग की भाग्य विधाता कौन है? जगत माता जगदम्बा की। जगदम्बा जरूर सधवा थी, जगत पिता भी साथ में था। जगदम्बा सरस्वती को ही कहते हैं। वास्तव में उनका नाम एक ही होना चाहिए, या तो सरस्वती कहें या जगदम्बा कहें, तुम्हारा भी नाम एक ही है ना, दो तीन नाम तो नहीं है ना। अब जगदम्बा को बरोबर साकार में दिखाती है, कहाँ शास्त्रों में भी दिखाते हैं और पुराने के पुराने चित्रों में भी दिखाते हैं। तो साबित होता है कि चरित्र करने वाली कोई माता हुई है, शरीरधारी है, जगत पिता भी है जिसको प्रजापिता भी कहा जाता है। सारे जगत का पिता कहो, विश्व का पिता कहो, या सारी प्रजा का पिता कहो, जैसे सारे जगत की अम्बा है वैसे सारे जगत का पिता है। जगदम्बा सारे जगत की है तो सारा जगत जगदम्बा को क्यों नहीं मानता? विदेशों में जगदम्बा को क्यों नहीं मानते? भारत में ही क्यों मानते?
भारत देश ऐसा है कि जो माटी का दोनों को
प्रवृत्ति मार्ग का देश है भारत देश, और दूसरे देश प्रवृत्ति को पालन करने वाले इतने नहीं हैं। वहाँ प्रवृत्ति की विशेष मान्यता नहीं है, खट से तलाक ले लेते हैं, दे देते हैं। तो जरूर जगत पिता जगदम्बा दोनों यहाँ ही होंगे, दोनों का नाम भी सुनाया, दोनों है प्रजापिता और प्रजा माता। क्या प्रजापिता और प्रजापत्नी नहीं कहेंगे, प्रजा की माता?
पिता को माता कहा जाता है, ऊंच से ऊंच माँ बाप बाकी है बच्चे। तो गीता और गीता पति ये हुए ऊंच से ऊंच माता पिता। अभी माँ बाप से वर्षा मिल सकता है, किसी वर्षा मिलना है माँ बाप से वर्षा मिलता है। माँ को आगे क्यों रख दिया, बाप से मिलता है या माँ से मिलता है? माँ के द्वारा बाप से वर्षा मिलता है, बाप माँ को आगे क्यों कर दिया? क्योंकि गीता माता है सर्वशास्त्रमयी, सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि, सर्वशास्त्रों का माई बाप। शास्त्र कहते ही है शासन करने वाला विधान। तो जो भी शासन करने वाले विधान हैं, शास्त्र हैं, उन सब में शिरोमणि पार्ट बजाने वाली, कोई जड़ गीता की बात नहीं है, चैतन्य गीता माता की बात है। माता जब कहा गया तो जरूर कोई ह्यूमन है, जड़त्व की बात नहीं। बाकी तो कितने भी शास्त्र पढ़े, कुछ भी करें, वर्षा नहीं मिल सकता सिवाय गीता माता की थ्रू।
तुम्हारी बुद्धि में गीता का ज्ञान है, उनकी बुद्धि में दूसरे दूसरे शास्त्र हैं, उनका ज्ञान बीच में गड़बड़ कर देता है, संघर्ष पैदा कर देता है। और तुम्हारी बुद्धि में किसका ज्ञान है? किसका बताया? गीता माता का ज्ञान। रामकृष्ण अवतार धरणी का आधार लेकर के चलते हैं, और जो कच्छ मच्छा आदि जानवर अवतार हैं, तुम्हारी बुद्धि में गीता माता का ज्ञान है। अगर गीता माता बीच में न हो, सिर्फ पिता हो, तो प्रवृत्ति मार्ग का ज्ञान हुआ या निवृत्ति मार्ग का ज्ञान हुआ? निवृत्ति मार्ग का ज्ञान हो जाता। रामकृष्ण धरणी का आधार लेते हैं, और दूसरे जो अवतार गाए हुए हैं वो जानवरी इसके अवतार है। जैसे कच्छ मच्छ अवतार ज्ञान जल का आधार लेते हैं, लेकिन माता का आधार माता को गुरु नहीं बनाते, इसलिए वो निवृत्ति मार्ग की हो जाते। उनका ज्ञान भी कौन सा हो जाता? निवृत्ति मार्ग का ज्ञान हो जाता। बाप बैठता शास्त्रों का सार समझा।
अरे अम्बा के मंदिर में इतना बड़ा मेला लगता है, इतनी भीड़ इकट्ठी होती है, अमरनाथ पे इतने यात्री नहीं पहुंचते, लेकिन जास्ती भीड़ कहाँ होती है? जगदम्बा के मंदिर में। तो इतनी भीड़, इतने मेला क्यों लगता है? हैं? भाग्य विधाता? नहीं, मेला किस बात की निशानी है? मिलन मेले की निशानी है। जरूर जगदम्बा ने बाप के साथ सबसे जास्ती मिलन मेला मनाया होगा। इतना मेला और किसी ने नहीं मनाया है, इतनी शक्ति और किसी ने नहीं भरी है जितनी जगदम्बा ने भरी है। इसलिए मेला सबसे जास्ती किसका गाया हुआ है? जगदम्बा का गाया हुआ है। और वो जगदम्बा ही भारत की सौभाग्य विधाता गाई हुई है। तो अब तुमको अंबाजी के मंदिर में जाकर सर्विस करनी चाहिए।
परमात्मा बाप आकर के वो ज्ञान चाहते हैं, तो ज्ञान हमारे तक आकर माताओं को देते हैं, माताओं को मुखिया बनाते हैं। ऐसी माता को मुखिया बनाते हैं जिसको कोई ज्ञान में क्रॉस कर नहीं सकता। नाम क्या करता है उसका? जगत अम्बा। क्या नाम देता है? जगत अम्बा, सारे जगत की माँ। ब्रह्मा की पूजा नहीं होती है, अर्थ ब्रह्मा नाम का भी नहीं है। ब्रह्म माने बड़ी और माँ माने माँ, लेकिन वो तन पुरुष का था, इसलिए दुर्योधन के शासन के विश्व में वो भी आता है। चाहे ब्रह्मा हो चाहे शंकर हो, लेकिन माता का जो रूप है वो स्वर्ग के गेट खोलने वाला स्वरूप है, इसलिए बंदे मात्रम लाया हुआ है। तो बाप आते हैं तो स्त्री चोला पुरुष चोला नहीं देखते। ज्ञान का वर्षा किसको रूप है? आज इस स्टेज में रहने वाला जो भी क्वालिटी का हो उसको नंबर वार वर्षा मिलेगा।
मुख्य धर्म शास्त्र है चार, कौन कौन से? गीता, कुरान, बाइबल और वैद्यों का ब्रह्म पद, जिससे मुख्य धर्मों की स्थापना होती है। पहले है गीता, फिर इस्लामी बौद्ध धर्म का शास्त्र, फिर वृद्धि होती जाती है। पुत्र पोत्र भी सब गीता के ही हो गए, ज्यादा उसके बाल बच्चे हो गए, ये सब गीता के ही बाल बच्चे हो गए। पुत्र और पोत्र इसलिए गाया जाता है श्रीमद् भगवत गीता। गीता माना गीत, महिमा। महिमा तो मनुष्य की नहीं होगी, तो गीता भी जरूर मनुष्य रूप में होगी। पहले चैतन्य होगी, जैसे गीता माता कहा जाता है। माता को इस जड़ किताब को नहीं कहा जाता, और उस माता के बच्चे भी हुए होंगे, फिर बच्चे के बच्चे हुए होंगे, तो पुत्र पौत्र हो गए। और कोई शास्त्र को ऐसे नहीं कहेंगे। शास्त्र का अर्थ ही है शास्त्र माने शासन करना, शास्त्र माने शासन करने वाला विधान, विधाता। तो विधाता तो ब्रह्मा को ही कहा जाता है। ब्रह्म माने बड़ी माँ, मन मन बड़ी माँ माने जगदम्बा, मन गीता माता, वही विधाता। जगती भाति विधाता माता, ओ माता तू है जगति भाग्य विधाता।
गीता में कृष्ण का नाम बालम है, गीता है धर्मशास्त्र में इसे मणि है। सर्व शास्त्रों में शिरोमणि यानी सर्वशास्त्र मई मई मन सर्वशास्त्रों के निचोड़ से भरी पूरी तो शिरोमणि हुई। सबसे उत्तम से उत्तम है गीता को ही माई बाप कहा जाता है। एक बात कह दो ना, माई कह दो चाहे बाप कह दो, दोनों कैसे कह दोगे? गीता माँ होगी या बाप होगा? गीता माता हुई या गीता बाप है? फिर माई बाप क्यों कहती है? माँ होंगी तो जरूर पीछे बाप है, बाप भी होगी। भगवान जी के मुखों में से निकली हुई गीता का ज्ञान, उस बाप ने भी उस गीता को जन्म दिया। करे कैसे कौन हुआ? बाप।
अब गीता को जन्म देने वाला कौन? परमपिता परमात्मा शिव। जन्म देने वाला रचयिता हुआ या रचना हुई? रचयिता हुआ। तो रचयिता जिसे क्रिएटर कहा जाता है, वो क्रिएटर साकार में चाहिए या ज्योति बिंदु शिव चाहिए? रचयिता तो कभी निराकार नहीं कहा जाता, क्योंकि बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप निराकार ज्योति बिंदु शिव। बिंदु बिंदु आत्माएं अनादि हैं या रची जाती हैं? वो तो अनादि है। जो बिंदु बिंदु आत्माएं अनादि हैं, उनके रचने का सवाल ही नहीं। तो उन बिंदु आत्माओं का जो बाप ज्योति बिंदु शिव है, उसको रचयिता नहीं कहेंगे। किसको कहेंगे? वही ज्योति बिंदु बाप जब इस सृष्टि पर आता है, प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा संसार में प्रत्यक्ष होता है, तो प्रजापिता के रूप में परमात्मा शिव प्रवेश करने पर रचयिता कहा जाता है। जिसका नाम है परम पिता परमात्मा शिव, क्या क्या टाइटल दिए? परम पिता, परे से परे रहने वाला पिता, प्रजापिता का भी पिता है। मनुष्य सृष्टि में मनुष्यों का पिता प्रजापिता, लेकिन उस प्रजापिता का भी पिता जिसका कोई पिता नहीं हो सकता, वो हुआ शिव। लेकिन फिर आगे लगा है परम पिता परमात्मा। परमात्मा क्यों लगाया? कि आत्माओं के बीच में जो परम पार्थधारी है, क्योंकि आत्माएं सब पार्थधारी हैं, 84 जन्मों में पार्ट बजाने वाली है, उन 84 जन्मों में पार्ट बजाने वाली आत्माओं के बीच जो परम पार्थधारी है, हीरो पार्थधारी कौन? प्रजापिता। इस सारी शक्ति रूपी रंगमंच का हीरो को राम बाप भी कहा,
उसके थ्रू परमात्मा शिव, परमपिता परमात्मा शिव कहे जाते हैं, जो गीता को जन्म देने वाले हैं, वो ही नॉलेजफुल है।
तो भाग्य विधाता माता ऐसे नहीं कि वो मर गई है, कभी रूप भी बदलना पड़ता है। इसलिए जो बच्चे ढीठ प्रकृति के होते हैं, नहीं सुधरने वाले होते हैं, तो उनको सुधारने के लिए नक फूल से क्या बनना पड़ता है, ला फूल भी बनना पड़ता है। तो कंप्लेंट करने की दरकार नहीं है, ऐसी अम्मा होती है क्या? माता भी ऐसी कठोर हो सकती है क्या? अरे माता का तो गायन है असुर दंगहारणी, नहीं तो भाग्य कैसे बनेंगे? भाग्य तो बिगड़ता ही जाएगा।
तो जो भी शक्तियां हैं, उन शक्तियों की माँ जगदम्बा गाई हुई है, सारे जगत की अम्बा, जगदम्बा कहो, ब्रह्मा कहो, ब्रह्मा ने बड़ी माँ, माँ ने माँ बड़ी माँ। तो बड़ी माँ के सामने बच्चों को कोई अहंकार नहीं करना चाहिए। तो आखिरी हमारी गली कौन सी हुई, रास्ता कौन सा हुआ? माता गुरु। अगर माता को गुरु नहीं बनाया तो कभी भी उद्धार हो नहीं सकता। माता गुरु को परमात्मा पाप आकर के झुक रहा है, वंदे मातरम क्यों कहा, वंदे पितरम क्यों नहीं कहा, क्यों नहीं वंदना की? क्योंकि माताओं में जितनी प्योरिटी होती है कांस्टेंट, उतनी भाइयों में पुरुषों में होती नहीं है। एक बात अलग हो सकती है, दूरवाद खुशवाद वाली। तो अव्वल नंबर सीता कौन सी हुई, जिसको गीता नाम दिया गया, जिसको दुर्गा नाम दिया गया, जिसको जगदम्बा नाम दिया गया, जिसको दिल्ली नाम दिया गया। एक के नाम अनेकों हैं, जैसे शिव के नाम अनेक हैं, वैसे शक्ति भी एक है और शक्ति के नाम अनेक हैं। का नाम एक है, वैसे शक्ति भी एक है और शक्ति के नाम अनेक हैं। तो परमात्मा शिव वो है पीछे बैकबोन के रूप में, और शक्तियां हैं आगे। बाप शक्तियों को ही आगे करते, इसमें हमको बहुत गौरव होना चाहिए। किनको? हम ब्राह्मण बच्चों को। दुनिया जिस बात को नहीं जानती, जिस राज को, उस राज को हमने जान लिया। आखिर माता तो हमारी है ना, हम मातेले बच्चे हैं या सौतेले बच्चे हैं? मातेले बच्चे हैं ना, मातेले बच्चे हैं हम बाप के। तो हमने बाप को भी अच्छी तरह पहचाना और माँ को भी अच्छी तरह पहचाना। ये गुरु जो है बीच में ऐसी पढ़ाई पढ़ाए देते हैं जिससे सब टंडीला उल्टा हो जाता है। तो उन गुरुओं को परखना है, ये बीच में धर्म गुरु गिरी करने वाले गुरु कौन से हैं? वो गुरु आधार मूर्तों की दुनिया में भी होते हैं और बीज रूप आत्माओं की दुनिया में भी ऐसे गुरु हैं जो कुछ का कुछ कर देते हैं अपनी कमजोरी के कारण। अपनी कमजोरी को समझते भी हैं कि हमारे अंदर ये कमजोरी है, लेकिन उस कमजोरी को समझते हुए भी खत्म नहीं कर पाते और मत्था मर देते हैं दूसरों के। ये गुरुओं का काम है अपना प्रभाव आगे करना, और जिसका असली प्रभाव है, जिसका प्रभाव बढ़ाना चाहिए, उसके प्रभाव को कम कर देना।
बाप तो सर्वशक्तिवान है, वो बाप गुरुओं का भी गुरु है, बापों का भी बाप है और पढ़ाई पढ़ाने वालों का भी टीचर है, टीचर्स का भी टीचर, सुप्रीम टीचर। अब कितने भी पढ़ाई पढ़ाई जाए, जब वो इनडायरेक्ट था तब तो बात चल जाती थी, अभी तो वो इनडायरेक्ट नहीं है। अगर ऐसा समझते हैं कि वो अभी भी बिंदु है तो ये बहुत भारी भूल है। तो राम बाप क्या चाहता है, बच्चे किसके कंट्रोल में चले, माता के कंट्रोल में चले। परिवार वही शोभता है जिस परिवार में बच्चे माँ के कंट्रोल में। क्यों? क्योंकि बाप को बाहर संभालना है या परिवार में घर में संभालना है, बाप कहाँ संभालेगा। बाहर के चित्र में ध्यान से देखो, जो नीचे माँ बाप बैठे हुए हैं वो बाप विदेशियों की तरफ बैठे हुए हैं बाहर वालों को कंट्रोल करने के लिए, और माँ माँ भारतवासियों को कंट्रोल करने के लिए बैठी हुई है। तो माँ के कंट्रोल में भारतवासियों को तो जरूर रहना चाहिए। अगर समझते हम विदेशी हैं तो फिर बाप बैठा हुआ है। मातेले बनना है, हर हालत में मातेले बनना है। इसलिए मुरली में बोला है कि माता की भी बात माननी चाहिए। भी शब्द लगा हुआ है, क्यों लगा हुआ कि पिता की तो माननी ही माननी है, लेकिन लेकिन माता गुरु की भी बात माननी जरूर है। तो एक बाप दूसरा न कोई, इसका मतलब ये नहीं है कि एक बाप दूसरा न कोई तो अम्मा न कोई है, कोई अम्मा है ही नहीं। वो भी तो बाप का ही रूप है, वो भी तो बीज रूप आत्मा है, रुद्रमाला के दोनों ही मणके है ना। इसलिए बोलने में बोला है कि एक विशेष आत्मा का ही पार्ट है, माँ का भी पार्ट है तो बाप का भी पार्ट है। कौन? ब्रह्मा। कैसे? माँ का पार्ट और बाप का पार्ट दोनों कैसे? दादा लिख रहा है कीर्तन में, दादा लिख रहा है कीर्तन में तो अम्मा का पार्ट चला, बाप का पार्ट तो कभी चला नहीं। ज्ञान का बीज बोने वाला भी वो नहीं साबित हो रहा है और वर्षा देने वाला भी वो नहीं साबित हो रहा है, तो फिर कौन सा ब्रह्मा जो बाप भी है और माता भी है। आदि ब्रह्मा, आदि ब्रह्मा, आदि माता, वही दूसरा जन्म लेकर के अगला जन्म लेकर के उसमें ब्रह्मा की सोल प्रवेश करती है और प्रवेश करके माता का भी पार्ट बजाती है। माना स्नेह मई भी बनती है, लेकिन कौन से बच्चों के प्रति? मातेले आज्ञाकारी बच्चों के प्रति। अगर विदेशियों के प्रभाव में है, विदेशियों का संग लगा पड़ा है, तो फिर उनके चाल ही ऐसी हो जाएगी कि जो लेना चाहिए वो नहीं ले सकेंगे। माता तो ममता मई होती है, लेकिन दादा लेखराज कीर्तन में जो माँ का पार्ट बजा और अब जो माँ का पार्ट चलना है उसमें अंतर तो जरूर होगा। दादा लेखराज के तन में क्या आसुर संहरणी का पार्ट चला था? नहीं। फिर किसके द्वारा चलेगा? जरूर कोई शक्ति ऐसी संसार के सामने आएगी जो ब्रह्मा के जस्ट अपोजिशन में पार्ट बजाएगी, और अपोजिशन में आकर के जब पार्ट बजाएगी तो उसके पीछे से शक्ति देने वाला भी जरूर कोई होगा। इसलिए दुनिया कहती है तुम्हारी गति में तुम ही जानो और न जाने। शिव बाप रुद्रमाला के मणकों में प्रवेश करता है ना, रुद्रमाला के मणकों में जगदम्बा भी तो एक मणका है कि नहीं है? है तो रुद्रमाला के मणकों में जैसे बाप प्रवेश करता है, परंतु पता नहीं चलता, कोई कह नहीं सकता कि मेरे अंदर प्रवेश है, तो ऐसे ही जगदम्बा में भी प्रवेश तो होता है। किसका? सुप्रीम सोल का। जैसे संगमी की कृष्ण में प्रवेश है, वैसे ही जगदम्बा में भी प्रवेश है।
सुकुमारी ओम राधे। शरीर छोड़ने के बाद कोई ब्राह्मणी में प्रवेश करती है और जिसमें प्रवेश करती है उसके थ्रू जगदम्बा का पार्ट बजाती है प्रवृत्ति मारकर। ऐसी ऐसी जो भयानक शकल बनाई है वो जगदम्बा की तो हो न सके लेकिन चित्र बनाया है तो चरित्र तो होगा ना कोई, बिना चरित्र के तो चित्र बनता नहीं है। तो जरूर जिन्होंने ये भयानक शकल बनाई है उन्होंने उस भयानकता का अनुभव किया है संगम युग में विकराल रूप का। वो असुर हैं जो माँ के रूप को भी भयानक रूप में देखने की आदि हो गई, नहीं तो माता का तो मृदुल रूप होता है। तो ऐसी भयानक शकल जो बनाई है ऐसी होती नहीं है, लेकिन आसुरी संस्कार वालों के प्रति ऐसा रूप धारण करना पड़ता है उनको ठिकाने लाने के लिए, क्योंकि कल्याणकारी ही पूजी जाती है। ऐसा भयानक स्वरूप उनके लिए धारण न किया जाए तो उन असुरों का कल्याण नहीं हो सकता। वो ब्रह्मा के प्यार से सुधरने वाले नहीं हैं, तो कल्याणकारी पूजी जाती है।
जैसे कृष्ण के लिए दिखाते हैं कि सबसे छोटी उंगली है और पहाड़ किसके ऊपर रखा, इसके ऊपर नहीं, किसके ऊपर रखा, छोटी। ज्यादा ताकत पांच उंगलियों में से किसमें होती है और किसमें कम ताकत होती है, है? सबसे छोटी उंगली कमजोर होती है, उंगली माना सहयोग, जिसमें सबसे कम सहयोग देने की शक्ति है माना है। इतनी ज्यादा 84 जन्मों में टक्कर खाते खाते टक्कर लेते लेते समस्याओं के और सबसे कमजोर हो चुकी, कौन सा शहर है दुनिया में ऐसा जिसने विदर्भियों की सबसे ज्यादा टक्करें झेली है? दिल्ली है, दिल्ली में विदर्भियों ने बहुत अत्याचार किए फिर भी दिल्ली सर्वसभ्य है कई शहरों के मुकाबले। तो जो सबसे कमजोर बन चुकी है उसका आधार लिया समस्याओं का पहाड़ उठाने के लिए, फिर दूसरे रूप में क्या दिखाया, नवैया काय की दिखाई है, पीपल के पत्ते की नवैया, कैसा पत्ता, पीपल का पत्ता, थोड़ा सा हवा का झोंका आया समस्याओं की रूपी हवाओं का अंधड़ का थोड़ा सा झोंका आया और जोर से हिलता है, उसका आधार लिया। और कहां वो पत्ता पड़ा हुआ है, पड़ा हुआ भी कहां है, कौन से सागर में, ज्ञान सागर में पड़ा है, है? अरे समस्याओं के सागर में, किसके बीच में पड़ा हुआ है, जो दुनिया के बड़े से बड़े नीचते नीच पार्ट बजाने वाले हैं 84 घंटे विधर्मियों के बीच, जिनसे ज्यादा खतरनाक कोई दुनिया में हो ही नहीं सकते मनुष्य, उनके बीच में है। किस लिए है उनके बीच में, सुधरने के लिए या डूबने के लिए या सुधारने के लिए, सुधारने के लिए उनको बीच में उस पत्ते को डाला हुआ है जिस पत्ते पर कृष्ण की सोल विराजमान है, कृष्ण की सोल ने उस पत्ते का आधार लिया हुआ है। कृष्ण की सोल कौन है, दादा लिख रहे उन्होंने तो कृष्ण दिखा दिया है लेकिन वास्तव में है कौन, शास्त्रों में तो कृष्ण को भगवान के रूप में दिखा दिया है लेकिन वास्तव में कौन है, वास्तव में शिव बाबा है, किसके द्वारा राजधानी स्थापन करते हैं, ब्रह्मा द्वारा, कौन से ब्रह्मा द्वारा, 69 में जिन्होंने शरीर छोड़ दिया उनके द्वारा हो गई, क्या बाबा का महावाक्य झूठ है, नहीं झूठा नहीं है, वो ही ब्रह्मा की सोल कोई ब्राह्मण बच्ची में प्रवेश करती है, जो शास्त्र में गायन दे दिया है कृष्ण का कि कृष्ण ने आधार लिया। लेकिन वास्तव में कृष्ण का भी आधार किसने लिया? शिव बाबा ने लिया ना। अभी प्रैक्टिकल में भी शिव बाबा उसका आधार लेता है, सर माथे पर रखता है।
तो 84 घंटे वाली देवी मानो जो 84 घंटे हैं सात जिधर में ब्रह्मावस्त रावण के प्रतिरूप हैं, सात पाद वाले राम हैं और नारायण और उनके सारे फॉलोअर और उनसे कनेक्टेड धर्म पिताएं जिनमें वो कन्वर्ट होते हैं और उनके सारे फॉलोअर वो सब हो गए रावण। ये रावण संप्रदाय को सुधारने के लिए बाप माता गुरु को ही आगे कर देता है। इसलिए वाणी में बोला है शंकर कोई बिना छोड़े करता है, बिना कौन करता है, शक्ति है संहार कारणी गायी हुई है। तो जो शक्तियां संहार कारणी गायी हुई है उन्हीं में से एक शक्ति दिखाई गई है जो उन दुष्टों के दुर्गुणों को दूर करने वाली दुर्गा गाई जाती है। लेकिन बाप का पार्ट वंडरफुल है तो अम्मा का पार्ट कोई, इसलिए एक वाणी में बोला है कि रचयिता बाप को तो फिर भी पहचाना जा सकता है लेकिन रचना को पहचानना मुश्किल। विदेहु गति जानी, विदेहु न नारी हृदय गति जानी। क्या भक्ति मार्ग में कह दिया है? विदेहु माने ब्रह्मा जी ने भी स्त्री के हृदय की गति को नहीं पहचाना। ये तो नहीं कहा कि परमात्मा ने नहीं पहचान पाया,
जरूर वो ब्रह्मा की सोल ही कोई कोई माता में प्रवेश करती है। इसलिए बोला हुआ है असुर संहारिणी गायी हुई है। कौन गायी हुई है? असुरों का संहार करने वाली वो देवी का रूप है, विकराल रूप जो असुरों के चेहरे प्रत्यक्ष करने के लिए निमित्त बनी हुई है। तो वो धर्मराज का जो रूप है असुर संहारिणी वो क्रिएशन है या क्रिएटर है? वो भी क्रिएशन है। धर्मराज है मेरा राइट हैंड, पर राइट हैंड माताओं को बताया या पुरुषों को बताया? माताओं को बताया।
तार ने जब ठुकराया तब द्वार तिहारी आया और भगवान करुणा को भी अपना लेता है। लेकिन लेकिन कुदरत तो टिक फार टाइट, बहुत टाइट है। क्या कहा? कान खड़े हुए कि नहीं? तो समय की पहले सेवा करके संयोग लेने का प्रभाव पड़ता है। हाँ, गीता का भगवान निराकारी स्टेज वाला शिव बाप है, साकारी स्टेज वाला कृष्ण गीता का भगवान नहीं है। अगर ये बात सिद्ध हो जाए कि निराकारी स्टेज वाला बाप शिव, जैसे और धर्म पिता है निराकारी स्टेज वाले हैं, वैसे ही गीता का पति जो भगवान है, गीता माता का पति जो है, और गीता है सबका माई बाप, और उस गीता माता का पति जो है वो कृष्ण नहीं है, कौन है? ब्रह्मा नहीं है, कोई और है जो निराकारी स्टेज वाला है। अगर ये बात साबित हो गई तो एक तरफ होगा जय जयकार और दूसरी तरफ होगा हाहाकार। कैसे होगी? इसका क्या मतलब हुआ? जो कृष्ण बच्चा है और बच्चों को कोई ये कह दे कि ये तो अम्मा के पति है, یا بچے یہ تیار ہو جائیں ہم مئو قسم بنائیں گے تو کیا ہوگا سنسار میں کیا ہوگا ہاہاکاری ہوگا تو بات بدھی میں بالکل کرنی پڑے کیا کیا بات کو پڑے کہ گیتا کا بھگوان کرشن بچہ نہیں ہے تو جب بڑا ہی بچہ نہیں ہے تو چھوٹے بچے کیا گیتا کے بھگوان ہو جائیں گے گیتا ماتا کے پتی بن جائیں گے نہیں بن سکتے ایسی پوائنٹ کو کلیئر کرنے کے لیے سب بچوں کا سہیوگ چاہیے آج میں جو پہلے پہلے باپ کی بننی بنی تو ایڈوانس پارٹی جب انت میں نکلتی ہے تو ایڈوانس پارٹی میں بھی پہلے پہلے باپ کی بننے والی بننی کون ہوگی آدی بہن آدی ماتا جس کے لیے 83 میں بولا اگست وانی سن 1380 چل رہا ہے تو 13 ہونا چاہیے نا کہ نہیں ہونا چاہیے وہ تو وہی پوری جنم کی بات ہے جس جنم میں ایڈوانس پارٹی جب ہوتی تو اگست وانی میں بولا سن 83 چل رہا ہے تو 13 ہونا چاہیے نا تو کیا اتنی بڑی سنستھا کھلی ہوئی ہے برہما کماری شری وشو ودیالے اور اتنے ڈھیر کے ڈھیر سرینڈر ہوئے برہما کماروں کماری کیا ابھی تک کوئی 13 نہیں بنا جو ایسا کچھ نے کر دیا ایسی بات کہہ دی کیا 83 میں 13 ہونا چاہیے نا اس کا مطلب 13 نمبر کتنا ارے یہاں تو پہلے ہی نمبر کی بات ہو رہی ہے جب پرماتما باپ رچیتا بن کے آیا آدھی میں آیا تو آدھی میں بھی پہلا نمبر کوئی 13 بنا آدھی ماتا بھی بنتی ہے تو انت میں بھی کوئی 13 بننے والی کوئی تو ہونی چاہیے جو پہلے پہلے بنے اور اس سے پہلے کوئی پریکٹیکل جیون میں اس کا نہ بنے تو پریکٹیکل جیون میں یہ بات لاگو ہونی چاہیے نا ہمارا تو جان مارگ ہے کوئی بھکتی مارگ تو ہے نہیں کہ اندھ شردا یوکت مارگ اندھ شردا سے کوئی بات مان لی جائے تو ایڈوانس پارٹی میں 13 ہونا چاہیے 13 مانا کس کا ہے پرماتما باپ کا رچیتا کریٹر باپ کا کوئی بننا چاہیے پہلے پہلے تو کون بنے گا کون بنتا ہے رچ برہما جو شریر چھوڑ گیا وہی ایڈوانس پارٹی میں جب 76 کے باپ پرتیکش ہوتا ہے تو پہلے پہلے کنیکشن میں آنا اور پھر باپ کا پہلے پہلے بننا تو جو پہلے پہلے بنے پریکٹیکل جیون کی بات ہے کیا بنے بننی بننی کا مطلب کیا پریکٹیکل جیون میں سب سے بڑا سہیوگی سرتی رچنا کے لیے ہینڈ کہا جاتا ہے بھوجا دمہ کی بھوجائیں تو پہلا پہلا ہینڈ تو ماتا ہوئی آدھ پتا اور آدھ ماتا یہ تو ہو گئے مہاویر مہاویر نے سب سے آگے قدم کون بڑھائیں گے مہاویر اور مہاویر تو دو سیتائیں یہ بہتوں کا سنکلپ چلتا ہے کہ آخر اصلی سیتا کون اصلی جگدمبا کون ہاں लेकिन जगदम्बा तो वास्तव में एक ही है, जगत की अम्बा। यज्ञ के आदि में ब्रह्मा बाबा ने अपने साक्षात्कारों का क्लेरिफिकेशन लेने के लिए डायरेक्ट प्रजापिता से कनेक्शन नहीं किया, कोई माता के थ्रू कनेक्शन हुआ पूछने के लिए। तो प्रजापिता में शिव बाबा ने प्रवेश करके क्लेरिफिकेशन तो दिया, लेकिन दिया किसको? डायरेक्ट ब्रह्मा को, कृष्ण की सोल को नहीं। पहले बीज का रोपण, बीजारोपण ज्ञान का किया गया जगदम्बा में, फर्स्ट माता में। तो माता वर्षा लेने की हकदार नहीं बनती है भारतवर्ष में। वर्षा किसको मिलता है? बच्चे को वर्षा मिलता है। माता अपनी आहुति देती है, तो कितना बड़ा त्याग है माताओं का। इसलिए वंदे मातरम कहा जाता है, वंदे पितरम नहीं कहा जाता है। हैं? हाँ, माताएं त्याग करती हैं। माताओं के त्याग से ही भारत स्वर्ग बनता है।
राइटर बाबा दादा
हैं?
राइटर
हाँ, ये वंदे मातरम का जो नारा है, हाँ, माता को भी रचने वाला पिता है, लेकिन रचयिता पिता है बीज। लेकिन जो बच्चों रूपी रचना आती है, स्वर्ग रूपी जो रचना रची जाती है, वो सीता के बगैर नहीं रची जा सकती। तो पतित पावन सीता राम कहा गया, सीता जरूर माना, सीता जरूर चाहिए। चाहे योगाग्नि में रखी जाने वाली सोने की मूर्ति सीता हो, और चाहे रावण की जेल में पहुंचने वाली सीता हो, दोनों का महत्व। और फिर योगाग्नि वाली भी सीता होनी चाहिए। योगाग्नि माना, योग माना क्या? योग माना लगन। योग तब होता है जब पहचान हो। पहचान के बगैर लगन लग सकती है क्या? नहीं लग सकती। तो एडवांस पार्टी में जो जगत पिता और जगदम्बा पहले प्रत्यक्ष होते हैं साकार रूप में, वो जगदम्बा हुई सीता, तो वो सोने की मूर्ति हुई। सोने की मूर्ति माना सच्चाई की मूर्ति, परमात्मा बाप जरूर है, उनको ही अपना बनाता है पहले। इसलिए अव्यक्त वाणी में संत त्रासी में 83 में क्या बोला, 83 में जितनी भी अव्यक्त वाणियां चली हैं, उनमें मोस्टली जो अव्यक्त वाणियां हैं वो कन्याओं के बारे में चली है। कन्याओं को जैसे सरेंडर कराना चाहता है बाबा, तो त्रासी में बोला था, सन 83 चल रहा है तो 13 होना चाहिए ना। अरे इतनी ढेर के ढेर ब्रह्मा कुमार कुमारियां सरेंडर हो गए, अभी तक 13 कोई बना ही नहीं, ऐसे क्यों बोला? बना तो, लेकिन बिना पहचाने बन गए। लेकिन अभी बच्चों के अंदर ये आस्था नहीं बैठी है कि हमारी माँ कौन है और सारे जगत की माँ कौन है। अगर इसी आस्था में ही गड़बड़ होती रहेगी तो ब्रह्मा के कुमार हुए? अरे ब्रह्मा माने बड़ी माँ, बड़ी माँ का बच्चा, क्योंकि बच्चा पहले माँ को पहचानता है या पहले बाप को पहचानता है? पहले तो माँ को पहचानेगा ना, बाद में माँ उसको पहचान देती है कि ये तुम्हारा बाप है। सब बच्चों को पहचान होती है कि ये बाप है। तो अगर अभी तक यही संशय निश्चय के चक्र चलता रहे, जन्म मरण का चक्र चलता रहे कि हमारी माँ कौन है, हमने जन्म किससे लिया, तो ऐसे बच्चों को फिर क्या कहें? हैं? ब्रह्मा कुमार कहें? प्रजापिता ब्रह्मा कुमार की तो बात ही छोड़ो, पहले तो क्या बनना है? पहले तो ब्रह्मा कुमार बनेगा ना, पहले तो बच्चा माँ का बच्चा बनता है ना। तो अभी ब्रह्मा कुमारी नहीं बने, एडवांस पार्टी में होते हुए भी टीवी के लिखते हुए भी कथनी और करने में अंतर आ जाए, अगर ये निश्चय अनिश्चय का चक्र चल रहा है बुद्धि में कि माता कौन, तो समझ लो हम अभी ब्रह्मा कुमारी नहीं। लेकिन बाबा ने तो बता दिया ना कि माँ का परिचय तुम बच्चे माँ को नहीं ढूंढ सकेंगे कि मम्मा कहाँ कार्य कर रही है, जगदम्बा सरस्वती कहाँ है, ये तुम बच्चे नहीं ढूंढ सकेंगे, संदेश में बताया था। तो कौन बताएगा फिर? बाप ही इशारा देता है कि जहाँ जगत पिता का पार्ट है वहाँ जगदम्बा का भी पार्ट। तो ये जगत पिता और जगदम्बा ये सारे जगत से कनेक्टेड हैं, विशेष आत्माएं हैं, इसलिए गाया हुआ है पतित पावन सीताराम। सीता पहले सहयोगी बनती है, प्राप्ति के टाइम पर माताएं पीछे हो जाती है, पति को पहले भोजन खिलाएंगी और खुद बाद में भोजन खाएंगे, और मेहनत के टाइम पर पहले आगे, सारा गृहस्थी का बोझ माता के ऊपर डाल दिया जाता है। बच्चे हों बच्चियां हों, कितने भी तंग करने वाले हों दुखी करने वाले हों, बाप को तकलीफ नहीं देगी, सारा बोझ अपने ऊपर ले लेती है। भले सर दर्द होता रहे, सर फटता रहे, तो भी मरकुट के भी गृहस्थी का बोझ अपने ऊपर लेगी। तो सीता और राम, लक्ष्मी और नारायण, ये क्यों गाए गए हैं पहले? क्योंकि माता का काम जो है वो कठिन काम है और उसमें त्याग भावना विशेष है, त्याग के बिना कभी भाग्य नहीं बन सकता। तो बच्चों का जो भाग्य बनता है वो माता के द्वारा भाग्य बनता है।
वास्तव में माता और पिता है कौन? लक्ष्मी नारायण को फिर क्यों कह देते हैं भक्ति मार्ग में? दो माता पिता है नहीं, लक्ष्मी नारायण तो माता पिता हो ही नहीं सकते। माता पिता से जो प्राप्ति होती है आत्माओं को, वो तो अनेक जन्मों की प्राप्ति है, और वो अनेक जन्मों की प्राप्ति कराने वाला त्वमेव माता च पिता त्वमेव, वो कोई देह को धारण करने वाली आत्माएं नहीं हो सकती, वो तो सिर्फ परम पिता परमात्मा ही है, जो माता भी बनता है और पिता भी बनता है। माता किसके द्वारा बनता है? जगदम्बा ब्रह्मा के द्वारा। वास्तव में जगदम्बा ये ब्रह्मा है, नाम भी है ब्रह्म, मन मा, ब्रह्म माने बड़ी, माँ माने माँ, मन बड़ी माँ, सारी सृष्टि की माँ, और जगत पिता माना रुद्रमाला के पहले जो दो मणके हैं उन्हीं में परमात्मा शिव प्रवेश करते पहले पहले, और उन्हीं के थ्रू माता पिता बनते हैं। तो वास्तव में ये महिमा है शिव बाबा की, ये कोई लक्ष्मी नारायण की महिमा नहीं है।
मुख्य शिरोमणि गीता श्रीमद भगवत गीता माना भगवान की गाई हुई, परंतु भगवान किसको कहा जाता है? भगवान किसका गायन करेगा, किसका गीत गाएगा? ऐसे नहीं, ये तो उनके गीत गाते रहते। गीत गाना माना महिमा करना, तो भगवान किसकी महिमा करता है? बच्चों में भी दो प्रकार के बच्चे हैं, मेल्स भी है फीमेल्स भी है, माताओं की महिमा करता है। कन्याओं की भी महिमा नहीं उतनी, किसकी महिमा? माताओं की विशेष महिमा करता है, और माताओं में भी लक्ष्मी माता की उतनी महिमा नहीं जितनी जगदम्बा की नहीं। तो श्रीमद् भगवत गीता माना भगवान की गई थी, इसलिए भारत में ये परंपरा अभी तक भी चली आ रही है। मान्यता है यत्र नार्यस्य पूज्यन्ते, यहाँ नारी को माता गुरु माना जाता है, नारियों की पूजा होती है, वहां साफ सुख शांति रहती है, और जहाँ उनका अपमान होता है वहां प्राप्ति नहीं हो पाती सुख शांति। तो भगवान के द्वारा जिसका दयन किया गया है, जीत जाया गया है, उसका कारण क्या, क्यों जीत गया, और प्यार की विषय तो कहने मात्र नहीं, कोई प्रैक्टिकल प्रूफ चाहिए, ऐसे नहीं। परंतु कोई भगवान को नहीं जानते, रचयिता बाप और उसकी रचना को नहीं जान पाते। रचयिता बाप को मान लो जान भी लिया, और उसकी जो फर्स्ट रचना है जिसका भगवान ही गायन करता है आज देवी, उसको न पहचान पाने के कारण वो डिसरिगार्ड करते। विदेशी लोग कभी माता को नहीं मानते गॉड मदर, क्या कहेंगे गॉड फादर, इसलिए उनको प्राप्ति नहीं हो पाती। बाबा तो बोलते हैं तो ब्रह्मा को प्रसन्न किया तो मैं भी प्रसन्न रहूंगा, अगर इसको ब्रह्मा को खुश नहीं कर पाया तो मेरे को भी खुश नहीं कर सकेंगे। तो वो कब आया ये कोई नहीं जानते।
जिन्होंने रचना और रचयिता को नहीं जाना, उनका रिगार्ड नहीं किया, तो वो कौन हुए? आसन है, नास्तिक है। बाप कहते हैं बच्चे ये राजधानी स्थापन हो रही है, कहा कही बड़ी अच्छी राजधानी स्थापन हो रही है, दो पाटन के बीच में साबित अचानक हो तब चबाए ले। कौन कौन से पाठ? एक ऊपर वाला पाठ आकाश, और एक नीचे वाला पाठ धरणी, धरणी माना माता, बावरी माता और बावरी पिता है। हुई हो शिवरात्रि जागरण, पूरी रात हुई गई जगत जगत सुंगत सुंगत। बाप कहते हैं बाप के पास जो नॉलेज है वो तुम सभी को देता हूँ। बच्चे ये राजधानी स्थापन हो रही है, क्या ये तरीका है राजधानी स्थापन होने, उसकी कथा कहानियां बनाए दी है कि जसोदा जी ने कृष्ण बच्चे को काय से बांधा, ओखली से बांधा था, जहाँ में चावल कुछ रहे। क्या चावल? हाँ चावल कूटे जा रहे हैं, उनका छिलका, ये देह अभिमान का छिलका उतरने का तरीका है। ये देह अभिमान का छिलका उतरेगा तो क्या होगा, राजधानी स्थापन हो जाएगी, चिंता मत करो।